खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि उसने ये दिन बख्शा कि हम सब तमाम जिंदगी की मसरूफियात में, तमाम जिंदगी की खुशियों में उसे अव्वल दर्जा दें। और यही खुदा चाहता है अपने लोगों से, यही खुदा चाहता है अपने बेटों और बेटियों से कि जैसे भी हालात हों, खुशी हो, गम हो, सुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, हम उस खुदावन खुदा को ना भूलें। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम मतलब प्रस्त हैं, हम वफादार नहीं बल्कि बेवफा हैं। लेकिन खुदावन हमें हर हालात में क्या दिखाता है? मोहब्बत, वफादारी, और वो हमसे बेवफाई नहीं करता, क्योंकि वो खुदा है। इंसान अपने वादों में तब्दील हो सकता है लेकिन खुदा हरगिज नहीं, क्योंकि वो खुदा है। और चाहता हूं कि आप सब बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, बहने, भाई इस बात को याद रखें कि खुदा की जात में ये खासियत है, खुदा की जात में ये खासियत है कि वो झूठ नहीं बोलता। हम इंसान झूठ बोलते हैं, हम इंसान अपना जहन बदल सकते हैं, लेकिन खुदा अपना जहन, अपनी जात से कभी झूठ नहीं बोलता। सो मैं चाहता हूं कि आज हम खुला में खुदा में से, नए अहदनामा में से चंद एक बातें अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखें। नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाप, उसकी पहली आयत से हम दसवीं आयत तक का हवाला पढ़ेंगे, ताकि आप सबको पता हो कि पूरे इस पहरे में क्या बात चल रही है। सो बच्चे बड़े गौर से सुने, और जो बहन भाई पढ़ सकते हैं वो भी। इफ़ेसियंस चैप्टर 2 वर्स 1-10। जिनके पास बाइबल नहीं वो गौर से सुने। इफ़ेसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाप, उसकी पहली आयत से दसवीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पालूस रसूल यहां पर रूह कुद्दस की रहनुमाई में कहता है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रफ्श पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और अकल और जिस्म और अकल के अरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यसु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो उसने मसीह में हम पर, जो मसीह में, मसीह यसु में हम पर आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमान के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, और ना क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो यहां पर से हम सीख रहे हैं, पालूस रसूल हमें सिखा रहा है कि हम कौन थे। लफ्ज कह रहा है हम कौन थे, क्योंकि पिछले बाब को हम देखते हैं कि पूरी 23 आयतों में वो बयान करता है कि तुम मसीह यसु में कौन हो या तुम्हारी हालत क्या है, यानी कि मौजूदा तौर पर तुम मसीह में जिंदा हो, तुम मसीह में उसके बेटे और बेटियां हो, तुम्हें खुदा में वो तमाम मिरास हासिल है। तुम आसमानी मकामों पर एक मकाम रखते हो, तुम्हें खुदा की अकल हासिल है, तुम्हें रूहुल कुद्दस की कुदरत हासिल है, तुम रूहुल कुद्दस में महफूज किए गए हो, तुम्हें लेपालक बेटे होने का हक बख्शा गया है, तुम पहले गुनाहगार थे अब मुकद्दसीन ठहराए गए हो। और यहां है सो पहला बाप हमें इस बारे में बताता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा मकाम मसीह में क्या है, तुम्हारी शिनाख्त क्या है। लेकिन दूसरे बाप में वो बताता है पहली ही आयत में, और उसने यानी के खुदावन खुदा ने तुम्हें भी जिंदा किया, यानी के हम मुर्दा थे, उसने हमें क्या किया, जिंदा किया। यहां पर वो हमारी रूहानी हालत बयान कर रहा है कि एक वक्त में हम मुर्दा थे लेकिन अब उसने हमें क्या किया है, जिंदा किया। जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिंदा इसलिए किया क्योंकि हम रूहानी तौर पर मुर्दा थे, रूहानी तौर पर खुदा से जुदा थे, रूहानी तौर पर खुदा से हमारी दुश्मनी थी। किस तरह? आदम के गुनाह के बायस। किस तरह? क्योंकि रोमियो 23:3 उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है, इसलिए के सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और फिर रोमियो 5:12 आयत मेरे साथ निकाले, वहां पर क्या लिखा है, रोमियो 5:12 आयत, रोमन्स चैप्टर 5:12, वहां पर भी लिखा है इसी गुनाह के बायस क्या हुआ, जुदाई पैदा हुई। और लिखा है 12वीं आयत में, पस जिस तरह, यहां पर पालूस रसूल वजह बयान करता है, जड़ बयान करता है, बच्चों जड़ बयान करता है कि वजह क्या है। जब मिसाल के तौर पर अगर पंखे बंद हो जाए तो हमें वजह पता चल जाएगी, बिजली बंद है। इसी तरह इंसान के दरमियान जो जुदाई और जो दुश्मनी पैदा हुई खुदा के और इंसान के दरमियान, उसकी वजह क्या थी, गुनाह। क्या वजह थी, गुनाह। और ये गुनाह आदम की नाफरमानी थी, आदम की नाफरमानी थी। इसका हरगिज मतलब नहीं कि उसने आम खाया या गंदम खाई या केले के फलों में से, केले के दरख्त पर से उसने कोई केला तोड़कर खा लिया। वजह क्या थी, जड़ क्या थी, नाफरमानी। खुदा ने कहा था कि तुम इस दरख्त का जो बाग के दरमियान में है इसमें से ना खाना। हरगिज नहीं कहा गया कि वहां पर सेब था या फिर वहां पर अंजीर लगे थे या फिर आम था या कोई और दरख्त। वजह यह थी कि नाफरमानी। तो यहां पर पालूस कहता है रोमियो 5:12 आयत में, पस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई। सबसे पहले कौन सी मौत आई, रूहानी मौत। कौन सी, रूहानी मौत। क्योंकि जब आदम को खुदा ने कहा था कि जिस रोज तूने खाया तू मरा, क्या वो मर गए, नहीं, वो तो छुप रहे थे। तो फिर कौन सी बात हो रही थी, कौन सी मौत के बारे में खुदा कह रहा था, रूहानी। रूहानी मौत को बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा से जुदाई, खुदा से दुश्मनी। हमारे और खुदा के दरमियान खला पैदा हो गया, हमारे और खुदा के दरमियान बड़ी दीवार बन गई जिसे इंसान पार करके जा नहीं सकता था, ना ही कोई ऐसा वाहद जरिया था जिसके वसीला से इंसान उसे फलांग सके या उसे तोड़ा जाए। तो किसके सबब से, गुनाह के सबब से। लेकिन उसका हाल आगे चलकर हम देखेंगे क्या है। आप सबको पता है कि गुनाह की दीवार को किसने ढाया, खुदावंद यीशु मसीह ने। हमने पिछले ही कुछ हफ्तों पहले ईस्टर मनाया जिसे कहते हैं ईद कियामत अल मसीह, यानी के सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी और मुर्दों में से जी उठा। और जब हैकल में जो पर्दा था फटा तो उसका मतलब है वो पर्दा, वो अलहदगी जो इंसान और खुदा के दरमियान थी, जहां पर सिर्फ काहिन ही जाता था, अब सबको खुदा की हजूरी में जाने की इजाजत है। इसलिए यहां पर पालूस कहता है, पस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सबने गुनाह किया। ये कोई वो गुनाह नहीं कि हमने झूठ बोला, चोरी की, या किसी की ईंट चुरा ली, या किसी की बदखोई की। नहीं, ये गुनाह बनी नू इंसान में कहां से आया? आदम के गुनाह के बायस, इसलिए आदम का गुनाह कहा गया है। औलाद किसके नाम से कहलाती है? मां के नाम से या बाप के? बाप के। सो आदम जिसे जद्दे अमजद कहा गया है, यानी कि हमारा बाप, उसकी नस्ल से हमारे खून में हर एक जो पैदा होता है उसमें क्या है? गुनाह है, सिवाय एक शख्सियत के, और वो कौन है? यसु मसीह। क्योंकि यसु मसीह इंसान की नस्ल से नहीं है, वो औरत की नस्ल से पैदा हुआ, और जो तुखम है वो क्या है? खुदा रूहुल कुद्दस है, खुदा की कुदरत से पैदा हुआ, इंसान से पैदा नहीं हुआ। इसीलिए खुदा ने कहा था कि एक देखो एक औरत एक कवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी। इसलिए हम सब किसकी नस्ल हैं? आदम की नस्ल। लेकिन यसु मसीह को क्या कहा गया है? वो औरत की नस्ल से आएगा, उसमें गुनाह नहीं होगा, वो ही इस काबल होगा। और उसी ने इफ़सियों 2:5 उसकी पहली आयत में कहा पालूस के वसीला से, और उसने, पालूस रसूल ये नहीं कह रहा कि किसी और ने, उसका लफ्ज जब इस्तेमाल होता है तो इंग्लिश में इसका जो हवाला या सोच है वो खुदा या खुदावन यसु मसीह की तरफ इशारा है। तो पीछे जो बात चल रही है इससे हमें मुकम्मल तौर पर पता चल जाता है कि कौन है ये वो, और उस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ यसु मसीह के लिए। किसके लिए? आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह हम इसे पुख्तगी के तौर से कह सकते हैं। मेरे साथ 22वीं आयत को देखें, इफ़सियों 1:5 उसकी 22वीं आयत। यहां पर पौलुस रसूल कहता है, मेरे साथ 19वीं आयत में देखें और वाजिया हो जाएगा। 19वीं आयत को मेरे साथ सुने और देखें और पढ़ें। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। किसकी कुदरत? खुदावन खुदा की। उसकी बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, यानी के खुदा ने जो कुदरत मसीह में जाहिर की, जब उसे, किसे? यसु मसीह को, क्योंकि कोई और नहीं, जब उसे मुर्दों में से जलाकर, कोई और मुर्दों में से जी उठा नहीं है। सो लफ्ज उसका किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? यसु मसीह के लिए। और जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया, कोई और खुदा की दाहिनी तरफ नहीं बैठा, सिर्फ यसु मसीह। और फिर आगे क्या लिखा है 21वीं आयत में, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। और फिर कहता है 22वीं आयत, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके? उसके, खुदावंद यीशु मसीह के, खुदावंद यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। और उसको फिर लफ्ज उसका वाजिया हो गया। अब किसको कहा जा रहा है? उसको, यीशु मसीह को। और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा बदन हो, तुम मेरी कलीसिया हो, तुम मेरा मकदस हो। तो पालूस रसूल शक में नहीं रखना चाहता जब वो लफ्ज उसका इस्तेमाल करता है कि वो ही वाहद है जिसमें ऐसी लियाकत है, ऐसी कुवत है, ऐसी काबिलियत है, ऐसा है जो गुनाह से पाक है, ऐसा है जिसने दावा किया था कि कौन मुझ में गुनाह साबित करता है। तो 22वीं आयत के दूसरे से हमें, और उस को सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया, ये उसका बदन है, और उसी की, फिर यीशु मसीह, उसी की मामूरी में से, मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। और फिर आगे बाप चलती हुई कहता है, और उसने, यानी कि यीशु मसीह ने تمہیں بھی زندہ کیا جب قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. ہم سب جب کوئی بھی زمین پر پیدا ہوتا ہے, کسی بھی اس کا مذہب سے تعلق ہے, وہ روحانی طور پر مردہ پیدا ہوتا ہے. یسوع مسیح کی ضرورت ہے, بغیر یسوع کے نجات نہیں ہے, بغیر اس پر ایمان لائے کوئی بھی دوزخ کی آگ سے بچ نہیں سکتا. اور یہ دوزخ کی آگ جس کے بارے میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے, اس میں کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا. وہی اس دوزخ کی آگ سے بچے گا جس کے نام کے ساتھ مسیح کا نام جڑا ہوگا, جس کے نام کے ساتھ مسیح کا نام جڑا ہوگا. یہی پالوس رسول چاہتا ہے کہ ہم اپنی پہچان حاصل کریں. تم مسیح میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو. بیٹو بچیو ادھر. تم مسیح یسوع میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو, کیونکہ یوحنا پہلا باب اس کی بارہویں آیت میں کیا لکھا ہے, لیکن جتنوں نے اسے, پھر لفظ آ گیا اسے, یعنی کہ یسوع مسیح کو, جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اس نے, یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے, خدا نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی ان کو جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا, وہی خدا کا بیٹی اور بیٹا کہلائے گا. اس کے علاوہ یہ نہ تو پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے بات, نہ سونے چاندی سے, نہ کسی اور بات سے, صرف اس کے کفارے پر یقین کرنے سے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پطرس رسول یہ بات ہرگز نہ کہتا. میرے ساتھ ایک حوالہ اچانک خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں میرے ذہن میں پھوٹ نکلا, سو میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ تک پہنچاؤں. پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 19ویں آیت, اس کی 18ویں آیت کو پڑھیں گے. فرسٹ پیٹر چیپٹر 1 ورس 18-19. اور یہاں پر خداوند کا بندہ پطرس کہتا ہے, پہلا پطرس پہلا باب اس کی 18ویں آیت, یہاں پر وہ بیان کرتا ہے ہماری حالت خداوند یسوع مسیح کے بغیر, حالت ہر ایک فرد بشر کی یسوع مسیح کے بغیر. یہاں پر کہتا ہے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے, اس سے تمہاری مخلصی, تمہاری خلاصی, تمہارا چھٹکارا, تمہاری رہائی, تمہارا چھڑایا جانا, اس موت سے نکالا جانا, اس گناہ کی منڈی سے چھوٹ جانا, کہتا ہے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے, یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی. گناہ کا کفارہ سونے چاندی کی چیزوں سے نہیں ہوا, بلکہ لکھا ہے, بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے, بے عیب اور بے داغ برے, یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمتی خون سے. کس کے؟ یسوع مسیح کے بیش قیمتی خون سے. اسی لیے آج اس کی صلیب خالی ہے, صلیب خالی ہے. اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جینا اٹھتا تو یسوع مسیح کی آج تصویر ہم لگاتے کہ وہ صلیب ہی پر ہے. اسی لیے صلیب خالی ہے, اسی لیے اسی کی قبر خالی ہے, اس لیے چرنی اس کی خالی ہے, اور وہ کہاں پر بیٹھا ہے؟ خدا باپ کی داہنے ہاتھ پر, خدا باپ کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے. اور وہاں سے وہ آئے گا, وہاں سے وہ آئے گا انصاف کرنے کے لیے, وہاں سے وہ آئے گا لوگوں کی عدالت کرنے کے لیے, راس بازوں کو انعام دینے کے لیے, سزا دینے کے لیے نہیں. جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے وہ انہیں سزا نہیں بلکہ اجر دینے کے لیے آئے گا. کیا دینے کے لیے آئے گا؟ اجر دینے کے لیے. اگر آپ کسی مسیحی کو ایک پیالہ پانی کا, کسی مسافر کو ایک پیالہ پانی کا پیاتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے, اس کا بہت بڑا اجر ہے. اس لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم زمین پر کسی لیے کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے لیے, نہ کہ کسی آدمی کو خوش کرنے کے لیے, نہ کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے, بلکہ اس کو جسے سب ناموں سے زیادہ افضل نام بخشا گیا ہے, جس کے نام سے پاتال کانپ اٹھتا ہے, جس کے نام سے موت اور آسمان اور زمین بھاگ جاتے ہیں. سو پالوس رسول یہاں پر بیان کرتا ہے کہ مسیحیو, تم ایک دن خدا سے جدا تھے, ایک وقت میں اس سے دور تھے, لیکن اب اس سے جدا نہیں ہو. کیونکہ یہی بات وہ آگے پھر یاد دلانے کے لیے کہتا ہے, इफ्सियों दो बाप उसकी बारहवीं आयत, इफ्सियों दो बाप उसकी बारहवीं आयत में पालूस फिर कहता है, अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के अहदों से ना वाकिफ और ना अमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। तीन जमाने हैं जो इंग्लिश में या अपने रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो यहां पर वो बात कर रहा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, यानी कि माजी में तुम क्या थे, क्या थे, खुदा से जुदा, उसके वादों से, उसके अहदों से, उसके तमाम उम्मीदों से और इस दुनिया में खुदा से जुदा थे। लेकिन क्या हुआ, तेरहवीं आयत, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यसू में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए, नजदीक हो गए, हो गए हो। ये हमारी हालत है, ये हमारी हालत है तेरहवीं आयत में, मगर तुम जो पहले दूर थे, एक वक्त में ये तुम्हारी हालत थी, अब मसीह यसु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। जुदाई थी, दुश्मनी थी, खुदा के साथ सुलह नहीं थी, और खुदा ने यीशु मसीह के खून के सबब से, सलीब पर कफारे के सबब से, सलीब पर जान देने के सबब से, हम जो मुर्दा लोग थे, हम जो गुनाह की मंडी में गुलामों की तरह थे, यीशु मसीह आया और उसने अपने सोने चांदी, ताकत, जोर या हीरे जवाहरात से हमें नहीं खरीदा, किससे खरीदा, अपना कफारा देकर, अपना कफारा देकर। सो आए इस बात को याद रखें कि हम उसके खून खरीदे हैं, इसलिए हमें मुर्दा लोगों की तरह जिंदगी बसर नहीं करनी, हमें जिंदा लोगों की तरह जिंदगी बसर करनी है। हमें यीशु मसीह को इज्जत और जलाल देने की जरूरत है, किसी आदमी को, किसी और बात को नहीं, ना ही अपने ख्यालात को, ना ही अपने एहसासात को, ना ही अपनी आदतों को, ना ही अपनी ख्वाहिशात को, बल्कि किसके नाम को, यीशु मसीह के नाम को। अगर ख्वाहिश पूरी हो तो हमारी जिंदगी में, यीशु मसीह की, अगर कोई एहसास हमारी जिंदगी में हो तो यीशु मसीह जैसा, अगर कोई हमारी तमन्ना हो तो हमारी तमन्ना यीशु मसीह जैसी होनी चाहिए। और ये तब होगा जब हम कहेंगे यूहन्ना रसूल की तरह कि जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े, तब ही ये होगा, जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, सारे पैगाम के लिए। छू सबको, बड़ी बरकत दे, और खुदावंद हम सब मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा अपने आप को जानते हुए जिंदगी के खुदा खुदा बानी के बारे में बताने वाले बने। सबको छू, बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।